पिछले अध्याय में आपने देखा कि रुद्र और रूही के बीच एक अंतरंग क्षण होता है। रूही रुद्र को छोड़ने के लिए कहती है और भाग जाती है। इसके बाद रुद्र बाथरूम में जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। रूही कमरे से भाग जाती है। इस बीच सुमन और धीरज के बीच प्रेम प्रसंग होता है, जहां धीरज सुमन के साथ अंतरंग होने के लिए जिद करता है। वे आखिरकार एक साथ हो जाते हैं। अब आगे चैप्टर 96। अब आगे सिंघानिया विला। कुछ देर में सुमन फ्रेश होकर बाहर आती हैं तो देखती है कि कमरे में कोई नहीं है, जिसे देख चैन की सांस लेती है और जाकर शीशे के सामने तैयार होने लगती है। तभी वे शीशे में कुछ ऐसा देखती है जिसके उसके चेहरे पर फिर से गुस्सा नजर आने लगता है। सुमन जब शीशे में अपने शरीर पर धीरज के दिए गए लव मार्क को देखती है तो उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है और वे खुद से ही कहती हैं, मैंने कितनी बार इनके कहा है कि लव मार्क मत बनाया करे, लेकिन ये है कि मेरी सुनते ही नहीं। इस लव मार्क से इनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन प्रॉब्लम तो मुझे हो जाती है ना। अगर मेरे बच्चों ने इस लव मार्क को देख लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इतना बोल वे गुस्से में उस लव मार्क को मेकअप से छिपाने लगती है। उसके बाद रेडी हो वे नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के रूम में रूही फ्रेश होकर वापस आती है। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और जीन्स टॉप पहन लिया था। फिर शीशे के पास जाकर जल्दी से अपने बालों की पोनीटेल बनाती है और हल्की सी अपने होठों पर लिप बाम लगा अपना बैग ले नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में रुद्रा आधे घंटे शावर ले जैसे तैसे खुद को शांत करता है। उसके बाद अपना ऑफिस सूट पहन रेडी हो जाता है। फिर रूही की लाई हुई कॉफी पी नीचे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में देवांश का जेट 5 मिनट में बस लैंड होने ही वाला था। तभी देवांश के कंधे पर सिर रख सोती हुई दिशा की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। वहीं देवांश जो कब से एकटक दिशा को देख रहा था और दिशा के बालों से खेल रहा था, दिशा की नींद खुलता हुआ देख वे नॉर्मल होकर बैठ जाता है। वहीं दिशा की आंखें खुलती हैं तो वे देवांश के कंधे पर अपना नोज रफ करने लगती है, जिसे महसूस कर देवांश अपनी आंखें बंद दिशा को महसूस करने लगता है। वहीं दिशा जो अपने नोज देवांश के कंधे पर रफ कर रही थी, जब उसे महसूस होता है कि वे अपना नोज मुलायम तकिए में नहीं बल्कि किसी हार्ड चीज पर रफ कर रही है, तो वे अपना सर उठा देखती है और अपनी आंखों के सामने देवांश को देख वे जल्दी से उसे दूर होती है। तभी वे चारों तरफ देखती है। तब जाकर उसे याद आता है कि वे अपने अनाथ आश्रम के बेड पर नहीं बल्कि चैट में है और इंदौर जा रही है। देवांश की आंखें बंद हुआ देख दिशा चैन की सांस लेते हुए अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ कि सर सो रहे हैं, वरना अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं उनके ऊपर सो गई थी और उनके कंधे पर अपनी नोज रफ कर रही थी तो पता नहीं सर मुझे क्या ही सजा देते। दिशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी जेट लैंड होता है और इसी के साथ देवांश भी अपनी आंखें खोल लेता है। जेट लैंड होने के बाद देवांश और दिशा बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर कुछ कार पहले से ही उन्हें लेने के लिए इंतजार कर रही थी, जिसे देख देवांश दिशा को ले कार में बैठ होटल के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सिंघानिया विला। इस समय सिंघानिया विला में सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठे हुए थे, केवल रुद्र और देवांश को छोड़कर। वहीं अर्जुन सुमन को देखते हुए बोला, मॉम मुझे जल्दी से वे आलू के पराठे दे गो, आज बहुत दिनों बाद मुझे आलू का पराठा दिख रहा है, आज तो मैं 4-5 पराठे खा ही लूंगा। अर्जुन की बात सुनकर सुमन मुस्कुराती है और अर्जुन के पराठे की प्लेट दे देती है। वहीं अर्जुन पराठे की प्लेट ले उसमें से 2 पराठे निकाल खाने लगता है। तभी उसकी नज़र रूही पर पड़ती है और वे रूही के प्लेट में भी 1 पराठे डालते हुए कहता है, रूही तू क्यों नहीं खा रही, तुझे तो आलू के पराठे बहुत पसंद है, पहले तो तू मुझसे लड़ लड़ कर खाया करती थी, अब क्या हुआ तुझे। अर्जुन की बात सुनकर रूही बोली, वे मेरा आज खाने का मन नहीं है इसलिए। इतना बोल वे मन ही मन रुद्र को गालियां देने लगती है, क्योंकि उसका आलू के पराठे खाने का मन तो बहुत कर रहा था, मगर रुद्र के उसके होठों पर बुरी तरह से किस करने की वजह से उसे पराठा खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे अपने होठों में जलन हो रही थी। वे मन ही मन रुद्र को गालियां दे ही रही थी कि तभी उसकी नज़र प्रीता दादी पर पड़ती है, जिनका गला उसे लाल लाल ज्यादा लग रहा था, जिसे देख रूही प्रीता की चिंता करते हुए कहती हैं, दादी ये आपके गले में ये निशान कैसे आया, अगर आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं अभी वहाँ दवा लगा दूंगी। गले पर निशान वाली बात सुनकर जहाँ सुमन घबरा जाती है कि कहीं रूही उसके निशान के बारे में बात तो नहीं कर रही है, लेकिन प्रीता दादी का नाम सुनकर वे चैन की सांस लेती है। वहीं बाकी लोगों की नज़र भी प्रीता दादी के गले पर चली जाती है और प्रीता दादी के गले पर बाइट के निशान देख सब हैरानी से प्रीता दादी को देखने लगते हैं, लेकिन दूसरे ही पल उन सभी के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि ये किस तरह का निशान है। तभी अर्जुन प्रीता को छेड़ते हुए एक मजाकिया मुस्कान के साथ बोला, हाँ हाँ दादी बताओ ना आपके गले पर ये निशान कैसे आया, लगता है किसी ने बहुत तेजी से काटा है। अर्जुन की बात सुनकर हमारी इनोसेंट रूही को तो कुछ समझ में नहीं आता, मगर बाकी सब अपना मुंह छिपाए हंसने लगते हैं। वहीं प्रीता जब सबको अपना मजाक बनाते हुए देखती है तो अपनी गुस्से भरी नजरों से रणविजय जी की तरफ देखती है, क्योंकि उसने इस बूढ़े इंसान को कितनी बार कहा था कि उसे बाइट न करे, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बूढ़े इंसान ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। इस बूढ़े इंसान ने उसे बाइट किया तो किया, पर उस निशान को भी छिपाने नहीं दिया, इसलिए अब सब उसका मजाक बना रहे हैं।
वहीं रणविजय जी जब प्रीता की गुस्से भरी नजर अपने ऊपर महसूस करते हैं तो सभी को देखते हुए अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं, चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार जो किसी ने मेरी प्रीता का मजाक बनाया तो तुम सबको मेरी प्रीता को या उसके निशान को देखने की कोई जरूरत नहीं है। उन सभी चीजों को देखने के लिए मैं हूँ। तुम सब चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो। रणविजय जी की बात सुनकर सब शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी अर्जुन की नजर अचानक ही रूही के गले के थोड़ा साइड पर पड़ती है, जिसे देख अर्जुन बोला, रूही, ये तेरे गले पर ये लाल और नीले निशान कैसे हैं? दिखा मुझे। इतना बोल वे रूही के चेहरे को पकड़ जैसे ही उसके चेहरे को दूसरी साइड करने वाला था और उस निशान को देखने वाला था, वैसे ही किसी की गुस्से भरी आवाज उस पूरे डाइनिंग एरिया पर गूंज उठती है, छोड़ो मेरी रूही को।
इस आवाज को सुनते ही अर्जुन के हाथ जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं और वे तुरंत रूही का चेहरा छोड़ देता है और उसके चेहरे पर डर नजर आने लगता है।